नमस्कार भारत, आज 11 जनवरी दिन बुधवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा थोड़ी ही देर में अपने गृह नगर शिकागो में देंगे विदाई भाषण। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है कार्यकाल। भड़काऊ बयान देने के लिए चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को दिया नोटिस, आज देना है जवाब।
भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है इस तरह के बयान जारी हो और बहुसंख्यक समुदाय एक प्लेटफॉर्म पे उनके साथ आ जाए और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ वोट करे।
झारखंड की आदिवासी चित्रकला सोहराई और कोहबर पहुंची पेरिस, प्रदर्शनी से आदिवासी कलाकारों को मिली एक नई पहचान।
आप जब चल जाते हैं डैडी वॉन श्रावण के एग्जीबिशन में तो आपको लगेगा कि आप कोहबर का गांव के अंदर में या सोहराई का गांव के अंदर में, आपको लगेगा नहीं कि आप फोटो गैलरी में हैं।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज राष्ट्रपति के तौर पर अपना विदाई भाषण देने वाले हैं। ये भाषण वो अपने गृह नगर शिकागो में देंगे, जहां से साल 2008 में वे चुनाव जीते थे और उन्होंने राष्ट्रपति की पारी की शुरुआत की थी। यहां से वो साल 2012 में भी जीते थे। भारतीय समय अनुसार 8:30 पर होने वाले इस भाषण में वो बीते 8 सालों में हुए विकास के कार्यों के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति के तौर पर बराक ओबामा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म होने वाला है। उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप देश के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। काबुल में अधिकारियों का कहना है कि अफगानिस्तान की संसद के पास हुए 2 बम धमाकों में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और करीब 80 लोग घायल हुए हैं। हमला उस वक्त हुआ जब इस इलाके में काफी भीड़ थी और लोग काम खत्म कर संसद परिसर से निकल रहे थे। धमाके के कुछ मिनट बाद ही तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ले ली और कहा कि वो राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की एक गाड़ी को निशाना बना रहे थे। पुलिस जांच दल के प्रमुख फ्रैदून ओबादी ने कहा,
حمله انتحاری متعاقب از متربان در جاده عمومی سرک دارالامان با وقوع پیوسته
ایک آتمگھاتی حملہور جو پیدل آیا تھا اس نے خود کو اڑا لیا۔ اس کے بعد ہی اس علاقے میں ایک کار بم دھماکہ ہو گیا جس کارن کئی لوگوں کی موت ہوئی اور بہت سے لوگ گھائل ہوئے۔ مارے جانے والے اور گھائل ہونے والے زیادہ تر لوگ عام ناگرک ہیں۔ ہم معاملے کی جانچ کر رہے ہیں۔ یہ تھے پولیس جانچ دل کے پرمکھ فرائدون عبادی کے شبد۔ उत्तरी यमन में सऊदी सरकार के नेतृत्व में हो रहे गठबंधन सेना के हवाई हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई है। हवाई हमला एक स्कूल के नजदीक हुआ था। हालांकि सेना के सूत्रों ने पहले कहा था कि हमला स्कूल पर हुआ था। जिस इलाके में हमला हुआ वह जगह राजधानी सना के उत्तर पूर्व में निम जिले के नजदीक है और हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। हूती विद्रोहियों के साथ लड़ाई में सऊदी सरकार के नेतृत्व में गठबंधन सेना यमन सरकार का समर्थन कर रही है। अमेरिका में एक ज्यूरी ने साउथ कैरोलिना में काले लोगों को मारने के आरोप में एक गोरे सुप्रीमासिस्ट व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। सुप्रीमासिस्ट यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी नस्ल को ही सबसे बेहतर मानता है। डिलेन रूफ नाम के इस व्यक्ति पर बीते महीने 30 मामलों में आरोप तय हुए थे, जिनमें नफरत की वजह से किए गए अपराध शामिल हैं। जून 2015 में डिलेन रूफ ने चार्ल्सटन में एक चर्च में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। जूरी को दिए अपने आखिरी बयान में डिलेन ने कहा था कि उन्होंने जो किया उस पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है और उन्हें लगता है कि उन्हें लोगों को मारना ही था। चर्च में हुई गोलीबारी में अपनी बहन खो चुके मेलविन ग्राहम ने कहा, ये उनके लिए जीत तो है लेकिन अधूरी।
This is a very hollow victory because my sister's still gone.
मैं अदालत में बैठा था। ये मेरे लिए एक अधूरी जीत है क्योंकि मेरी बहन तो लौट कर नहीं आई। काश कोर्ट का ये फैसला मेरी बहन को भी वापस ला पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो काम जो यह फैसला कर सकता है वो यह है कि जो लोग भी डिलेन की तरह सोचते हैं उन्हें ये संदेश मिलना चाहिए कि हमारा समुदाय यह बर्दाश्त नहीं करेगा। ये थे चर्च में हुई गोलीबारी में अपनी बहन खो चुके मेलविन ग्राहम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के देशों में आपसी मतभेद सुलझाने की नई कोशिश करने की गुजारिश के कुछ देर बाद ही संयुक्त राष्ट्र के लिए अमरीकी और रूसी दूत के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। अमरीकी दूत सैमंथा पावर ने रूस पर यूक्रेन की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और सीरिया में बेदर्दी से हमले करने के आरोप लगाए। रूसी दूत विटाली चुरकिन ने कहा कि ओबामा प्रशासन इराक, सीरिया और लीबिया में अपनी नाकामी छिपाने के लिए बलि के बकरों की तलाश कर रहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा अब से थोड़ी देर बाद अपने गृह नगर शिकागो में राष्ट्रपति के रूप में अपना विदाई भाषण देंगे। 20 जनवरी 2009 को ओबामा ने अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली थी और चार चार साल का दो कार्यकाल पूरा करने के बाद वो अब व्हाइट हाउस से विदा हो रहे हैं। सीधे चलते हैं वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति ओबामा अपना विदाई भाषण देने वाले हैं, वो क्या कुछ कह सकते हैं आज?
देखिए, काफी भावुक मौका होगा न सिर्फ राष्ट्रपति ओबामा के लिए बल्कि करोड़ों अमरीकियों के लिए जिन्होंने उनके होप और चेंज यानी उम्मीद और बदलाव के पैगाम को गले लगाया था। ओबामा ने कई हफ्तों से इसकी तैयारी की है, कई ड्राफ्ट्स बदले हैं और व्हाइट हाउस के अंदर से ये भाषण जो आमतौर पर प्रथा रही है देने की बजाय उस शहर यानी शिकागो से भाषण दे रहे हैं जहां उनके राजनीतिक करियर की एक तरह से शुरुआत हुई थी। जो थोड़ा बहुत अंदाजा मिला है उनके इस विदाई भाषण का, उसके अनुसार ये एक विक्ट्री लैप या आप कह सकते हैं कि उपलब्धियों को गिनाने वाला भाषण नहीं होगा बल्कि भविष्य की तरफ देखने वाला भाषण होगा। एक पैगाम जो वो देने की कोशिश करेंगे वो होगा कि विविधता और इंसाफ, यही दो बातें हैं जो अमेरिका को आगे ले जाएंगी। और बहुत लोगों का कहना है कि ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक संदेश होगा जिन्होंने अपने चुनावी अभियान में देश को काफी हद तक पोलराइज किया था। 8 साल पहले जब राष्ट्रपति ओबामा अपनी जीत के बाद यही इसी शिकागो में ही उन्होंने अपना भाषण दिया था तो मुझे याद है कि लोगों के आंसू, खास तौर से अफ्रीकी अमरीकी समुदाय के आंसू थम नहीं रहे थे। और आज जब यहाँ पर 20,000 की भीड़ जुटी है इस बिल्कुल शिकागो की कपकपाती हुई ठंड में, तो वहां भी काफी सारी आंखें नम होंगी, इसमें शायद ही किसी को शक हो।
ब्रजेश, ओबामा अमेरिका के उन कुछ चुनिंदा राष्ट्रपतियों में शुमार हैं जिन्हें जनता का भरपूर प्यार मिला, जिसकी बदौलत वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें तो उन्हें किस रूप में याद किया जाएगा?
नहीं जी, बिल्कुल सही कहा आपने, अभी जब वो पद छोड़ रहे हैं 8 साल के बाद तो उनकी जो रेटिंग्स है वो इतनी बिल्कुल आसमान चूम रही है, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश से तो कहीं ज्यादा आगे हैं, बिल क्लिंटन जो कि काफी एक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे उनसे भी आगे हैं। अमरीकी इतिहास एक तरह से आप देखें तो उन्हें हमेशा अमरीका के पहले अफ्रीकी अमरीकी या काले राष्ट्रपति के तौर पर याद किया जाएगा। और दूसरी जो बड़ी बात होगी, जो लाखों अमरीकियों को स्वास्थ्य सेवा के दायरे में लाने के लिए जो ओबामा केयर के नाम से मशहूर हुआ, लेकिन कई विश्लेषकों का ये भी मानना है कि ये जो दोनों बातें हैं एक तरह से उनके पूरे 8 साल का जो उनका सत्र रहा, जो 4-4 साल के जो 2 सत्र है उस पर इसका काफी इन्हीं दोनों बातों का प्रभाव भी नजर आया। और 2016 के चुनाव में भी इसकी छाप नजर आई। 2008 की मंदी से निकालकर अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर लाने में उनका बड़ा योगदान रहा, और साथ ही ईरान से हुआ परमाणु समझौता, क्यूबा के साथ रिश्ते बहाल करना और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लिए चीन और भारत को रजामंद करना उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन साथ ही उनकी विदेश नीति की काफी आलोचना रही है, खासतौर से सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना उनकी बड़ी कमजोरी के तौर पर देखा गया। उनके आलोचना करने वालों के अनुसार उनके एक तरह से नेतृत्व में अमेरिका का जो असर है पूरी दुनिया में, जो दबदबा है उसमें कमी आई और एक वैक्यूम क्रिएट हुआ खासतौर से मध्य पूर्व में जहां रूस और ईरान का दबदबा बढ़ा। लेकिन राष्ट्रपति ओबामा और उनके विदेश मंत्री जॉन केरी और साथ ही जो उनके टीम के दूसरे सदस्य हैं उनका ये मानना था कि ओबामा ने जैसे शुरू से ही कूटनीति पर को वो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने के हक में थे। और जो बाद में एक और बात निकल कर आई कि वो ये खुद ये कह चुके हैं कि अमरीका को दुनिया का पुलिसमैन बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत लोग अभी भी मध्य पूर्व की जो हालत है, खराब हालत है, उसके लिए ओबामा प्रशासन को काफी हद तक जिम्मेदार मानते हैं कि अमरीका ने वो नेतृत्व नहीं दिखाया जिसकी उससे उम्मीद की जाती है।
जी ब्रजेश उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, शाम के कार्यक्रम में हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के कथित विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है और आज उनसे जवाब मांगा है। साक्षी महाराज ने गत 7 जनवरी को एक समुदाय विशेष को लक्ष्य करते हुए उसे देश की आबादी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बताया था। भारतीय जनता पार्टी ने साक्षी महाराज के बयान की निंदा तो नहीं की है, लेकिन उससे किनारा जरूर किया है। वहीं दूसरे राजनीतिक दल इस तरह के बयानों को बीजेपी की सोची समझी साजिश बता रहे हैं। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज पिछले दिनों मेरठ में एक धर्म सम्मेलन में ये बात कह रहे थे। राज्य में अगले महीने से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उसके लिए आचार संहिता लागू है, ये उन्हें जरूर पता होगा। मेरठ में साक्षी महाराज के इस बयान के खिलाफ FIR भी हुई है, लेकिन कल चुनाव आयोग ने भी उन्हें एक नोटिस भेजकर कहा है कि शुरुआती तौर पर लगता है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। साक्षी महाराज को नोटिस का जवाब देने के लिए बुधवार तक का समय दिया गया है। साक्षी महाराज ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है, बल्कि अक्सर उनके विवादित बयान ही सुर्खियों में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस ताज़ा बयान से खुद को अलग जरूर किया है, लेकिन निंदा नहीं की है। पार्टी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव कहते हैं,
साक्षी जी का जो बयान है वो पार्टी का बयान नहीं है। उन्होंने अगर कोई व्यक्तिगत स्तर पे कुछ बोला है तो उसमें पार्टी के उससे अपने को असंबद्ध करती है। इसी तरह के कंट्रोवर्शियल बयान को पार्टी न तो किसी कार्यकर्ता को कहती है और न किसी नेता से ये अपेक्षा करती है किसी तरह का विवादास्पद बयान दे।
दरअसल अक्सर विवादित बयानों के कारण चर्चा में आने के बावजूद साक्षी महाराज और ऐसे कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ पार्टी ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि नेताओं का निजी बयान कहकर पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन चुनावी माहौल होने के नाते राजनीतिक दलों ने साक्षी महाराज के इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस पार्टी का तो आरोप है कि ऐसे बयान बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी प्रवक्ता वीरेंद्र मदान कहते हैं,
भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है इस तरह के बयान जारी हो और बहुसंख्यक समुदाय एक प्लेटफॉर्म पे उनके साथ आ जाए और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ वोट करे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और RSS की उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रणनीति भी हो सकती है।
बहरहाल साक्षी महाराज के बयान को आयोग ने गंभीरता से लिया है और मेरठ जिला प्रशासन से इस बारे में रिपोर्ट भी मंगाई है। हालांकि साक्षी महाराज पहले ही कह चुके हैं कि नोटिस अंग्रेजी में है, इसलिए वो इसका जवाब एक दिन में नहीं दे सकते। लेकिन जानकारों का कहना है कि सवाल नोटिस और उसका जवाब देने का नहीं, बल्कि ऐसे बयानों की पुनरावृत्ति न हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों द्वारा 16 आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन प्रताड़ना के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता दिए जाने की नोटिस के बाद जहां विपक्षी दल राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार का कहना है कि इस तरह के आरोप माओवादियों के दबाव में लगाए गए हो सकते हैं। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
मानवाधिकार आयोग को 11 से 14 जनवरी 2016 के बीच बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार और शारीरिक प्रताड़ना की खबर मिली, जिसके बाद मानवाधिकार आयोग ने अपने अन्वेषण और विधि विभाग के एक जांच दल को मौके पर जाकर जाँच के निर्देश दिए थे। अब इसी जाँच के बाद मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर में पुलिसकर्मियों द्वारा 16 आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ को आरंभिक रूप से सही मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इन आदिवासी महिलाओं को अंतरिम आर्थिक सहायता के रूप में 37 लाख रुपए दिए जाने की अनुशंसा क्यों नहीं की जाए। राज्य सरकार को नोटिस मिलने के बाद से ही कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल का कहना है कि बस्तर में एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं और सरकार चुप है।
रमा सिंह को एक मिनट पद में नहीं रहना चाहिए, यहाँ इस सरकार को बर्खास्त करके 356 लगाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी भी नैतिकता है तो केंद्रीय नेतृत्व इसको संज्ञान में लेकर उसमें कार्रवाई करे, हम राष्ट्रपति जी से भी मिलकर इस मांग को दोहराएंगे।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने पूरे मामले से अनभिज्ञता जताई और इसे विरोधियों की साजिश बताया।
बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती है जो इन कामों को रोकने के लिए, गलत प्रकार से सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीजें प्रस्तुत होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रिपोर्ट देखने के बाद निश्चित रूप से इस पर कोई तथ्यात्मक रूप से बातचीत हो पाएगी।
हालांकि राज्य के गृह मंत्री रामसेवक पैंकरा ने यह तो स्वीकार किया कि मानवाधिकार आयोग की नोटिस को लेकर सरकार गंभीर है और वह दोषियों पर जांच के बाद कार्रवाई भी करेगी, लेकिन उनका यह भी कहना था कि बस्तर में माओवादी ग्रामीणों को ऐसे आरोपों के लिए बरगलाते हैं।
क्योंकि उन क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण हमारी सरकार, हमारे लोग लगातार, मैंने कहा कि उस क्षेत्र में काम हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उस क्षेत्र में निश्चित है कि जो नक्सली हैं वो भोले वाले आदिवासी वर्ग को अपने साथ ले जाते हैं, उसका नुकसान भी होता है।
बस्तर में पुलिस अत्याचार को लेकर पिछले कुछ महीनों में अनुसूचित जनजाति आयोग, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद मानवाधिकार आयोग की इस नोटिस ने सामाजिक संगठनों को भी सरकार के खिलाफ एकजुट कर दिया है और सरकार लाख सफाई दे, बस्तर के मामले में वह लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
पिछले दिनों भारत के पूर्व वित्त और विदेश मंत्री और भाजपा नेता यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय टीम ने भारत प्रशासित कश्मीर का दौरा किया। चंद दिन पहले इस फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि कश्मीर समस्या का हल बातचीत से ही संभव है। बीबीसी उर्दू संवाददाता शकील अख्तर ने यशवंत सिन्हा से खास इंटरव्यू के दौरान पूछा कि जब वो कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने क्या सूरत हाल देखा।
कश्मीर की वादी में घूमे तो हमें ये महसूस हुआ कि इस तरह की भावना है, एक फीलिंग है, खास करके नौजवानों में, जैसा आपने कहा, और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि शायद पहली बार ये खौफ की बात उनके अंदर ख़त्म हो रही है।
जो अभी जो सिचुएशन पैदा हुई थी पिछले 4-5 महीने जो शोरिश रही वहाँ पर, उसके बारे में यहाँ हिंदुस्तान में बिल्कुल खामोशी रही। ट्रस्ट इतना टूटा हुआ है कि उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान को कोई दिलचस्पी हमें नहीं है।
जाने को तो बहुत ग्रुप्स गए, डेलीगेशंस गए, यहाँ के जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो भी गए, उनके साथ एक ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी गया, तो कोशिश हुई कि हम कश्मीर के आवाम तक पहुँचें। कुछ हमें उसमें सफलता भी मिली, लेकिन सारे दरवाजे अनफॉर्चुनेटली नहीं खुले। मैं अपने को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं अपने ग्रुप के साथ जब गया तो हमारे लिए दरवाजे खुले, और बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस थे जो उस समय नहीं मिले पार्लियामेंट्री डेलीगेशन से, लेकिन हमसे मिले वो लोग और उनकी बात हमने सुनी। इसी तरह जब हम ज़िलों में गए तो वहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में आए, बातचीत अपनी, उन्होंने अपनी तकरीर रखी हमारे सामने, और हमने जो रिपोर्ट बनाई है इस बार उसमें हमने उसको दिखाने की कोशिश की है कि लोगों की फीलिंग क्या है हमारे बारे में। आपने ठीक कहा कि दूरी बढ़ी है, और इसीलिए जोर देकर हमने दोनों रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि उस दूरी को पाटने की कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि दूरी को अगर हम बातचीत के नज़रिए से अगर नहीं पाटने की कोशिश करेंगे तो फिर दोनों तरफ एक ही उपाय बचेगा जिसमें बहुत खून खराबा होगा।
तो बातचीत तो बिल्कुल बंद है इस वक्त, सारे रास्ते बंद हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि वाजपेयी हुकूमत ही एक ऐसी, पहली बार किसी हुकूमत ने संजीदा कोशिश की थी कि इस मसले को, इसको हल करने की कोशिश की जाए। क्या फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं, क्या कमी है?
नहीं, वो वाजपेयी जी की बात आपने की वो बिल्कुल सही आपने कहा कि आज भी इस माहौल में भी लोग याद करते हैं उनके अप्रोच को, और ये महसूस करते हैं, कहते हैं कि साहब उसी अप्रोच से अगर आगे बढ़ने की कोशिश की जाए तो शायद हम मंजिल की ओर आगे बढ़ें। लेकिन उसमें दोनों तरफ से कुछ न कुछ हमें पहल करनी होगी, कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और उसी बात पर हम लोग जोर दे रहे हैं। जैसे वाजपेयी जी ने कहा इंसानियत के दायरे में बात होगी, तो हमको कहना चाहिए कि हम इंसानियत के दायरे में बात करेंगे।
लेकिन
ये थे पूर्व वित्त और विदेश मंत्री और भाजपा नेता यशवंत सिन्हा। और अब दिल्ली से निकलने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास छपा है, जानते हैं मानसी से। जी मानसी,
सबसे पहले खबर आम आदमी से जुड़ी, यात्री रेल किरायों में बढ़ोतरी हो सकती है। यह रिपोर्ट छापी है अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने, जिसके अनुसार इस साल जून तक सरकार रेल विकास प्राधिकरण के नाम से एक स्वतंत्र रेलवे नियामक का गठन कर सकती है। यह नियामक यात्री भाड़े और माल भाड़े में बदलाव करने संबंधी सुझाव देगी। ये सुझाव रेलवे के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे जैसे कि पेंशन, कर्ज और बाजार की और ताकतों के आधार पर दिए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल रेल राजस्व का 67% हिस्सा माल भाड़े से आता है, जबकि केवल 27% आय यात्री भाड़े से होती है। रेलवे माल भाड़े से कमाए अपने लाभ से यात्री भाड़े में सब्सिडी देता है। अखबार के अनुसार एक अधिकारी का कहना है कि सरकार लंबे वक्त से रेल किराए तय करने संबंधी फैसलों को राजनीति से अलग रखना चाहती है और हो सकता है कि इस प्रस्ताव को इसी महीने कैबिनेट की मंजूरी मिल जाए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी का असर पड़ा है गाड़ियों की बिक्री पर। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद लोगों ने गाड़ी, मोटरसाइकिल और ट्रक खरीदने के अपने फैसले को रोक दिया, जिसके कारण गाड़ियों की बिक्री कम हुई है। आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2015 में जहां करीब 15,02,000 गाड़ियों की बिक्री हुई थी, दिसंबर 2016 में 15,21,000 गाड़ियों, माफ कीजिएगा, कुछ 19% बिक्री कम हुई है, जो कि साल 2000 के बाद से यानी बीते 16 सालों में सबसे कम है। एशियन एज में छपी एक खबर के अनुसार केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि उन्हें निजी तौर पर सांड को काबू करने के खेल जल्लीकट्टू पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु का पारंपरिक कला व खेल है और इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इस पर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है तो एक मंत्री होते हुए मैं उसका विरोध नहीं कर सकता। जनसत्ता में एक खबर छपी है जिसके अनुसार चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापन वाले होर्डिंग्स और वो सभी होर्डिंग्स जिनमें किसी राजनीतिक पदाधिकारी और दल की उपलब्धियों को गिनाया गया है, उन्हें या तो ढक दिया जाए या फिर उन्हें हटा लिया जाए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी अखबारों की समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जनजातीय कला सुहराई और कोहबर गांवों शहरों से होते हुए पेरिस में जाकर और चमक उठी है। हजारीबाग के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में ये कला सालों से चली आ रही है। इन कलाओं के जरिए महिलाएं कच्चे घरों की मिट्टी की दीवारों पर तरह तरह के चित्र बनाती हैं, जिनमें उनके जीवन की सौंदर्यपूर्ण झांकी होती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गंवई महिलाओं की दीवारों पर उकेरी आकर्षक आकृतियों की अपने मन की बात में भी चर्चा की थी। गुमनामी में खोती इस कला को संरक्षण देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, सुनिए नीरज सिन्हा की इस रिपोर्ट में।
हजारीबाग के सहेदा गांव की पुतली गंजू अपने जानवरों और खेतों को निहारना चाहती हैं। इस बार धान की पैदावार जो अच्छी है, उन्हें खुशी है कि जिस सोहराई कला को जीवन बसर का माध्यम बनाया है, उसकी चमक बढ़ती जा रही है। पुतली को पढ़ना लिखना नहीं आता, पर दीवारों पर उनकी हुनर बोलती है। वो कहती हैं,
पढ़ रही है, हमारा गांव में तो स्कूल ना ले तो पढ़बे कहाँ से, वह यह यही सब सीख रहे थे देवाल ने सिखो लिए, पढ़बे ना करो लिए तो यह सब तो सीखो लिए, वह दिन भर सीखो लिए देवाल ने, वह सीखते सीखते या गलिए हियाँ, हियाँ से बहुत दूर तक ले चल गलिए, फिर भी हमारा यही काम जिंदगी भर ले चले, अच्छा से बनाए हम।
पुतली गंजू समेत दर्जनों महिलाओं को इसका गुमान है कि उनके पापा ने इस कला को चमकाने में सालों के वक्त लगाए हैं, मीलों की दूरियां नापी हैं। दरअसल ये महिलाएं हजारीबाग के बुल्लू इमाम नामक शख्स को पापा के नाम से जानती पुकारती हैं, जो 3 दशकों से ज़्यादा वक्त से इस कला को मुकाम देने की कोशिशों में जुटे हैं। हाल ही में पेरिस के एक आर्ट गैलरी में दुनिया की मशहूर फोटोग्राफर डैडी वान सावन ने हजारीबाग में खींची इन्हीं तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई थी। बुल्ले इमाम बताते हैं,
इनका आप एग्जीबिशन का देखिएगा, जो इनलार्जमेंट्स बनी है वो करीब आपका 7x16 feet का एक एक दीवार है, तो 7x16 feet का फोटोग्राफ सिर्फ इनलार्ज नहीं किया गया है, मगर 3-dimensional डेप्थ में इनलार्ज किया गया है। और ये एग्जीबिशन जो इंटरनेट में नहीं देखे हैं, एक बहुत बड़ा चीज़ नहीं देखे हैं, आप जब चल जाते हैं डैडी वॉन शावन के एग्जीबिशन में तो आपको लगेगा कि आप कोवर का गाँव के अंदर में या सोराय का गांव के अंदर में, आपको लगेगा नहीं कि आप फोटो गैलरी में हैं।
इन कलाओं में पशु पक्षी प्रेम, डोली पर जाती दुल्हन, राजा रानी, फसलों की बुआई कटाई समेत कई आकृतियां दीवारों पर उकेरी जाती हैं। बुल्लो इमाम का दावा है कि बड़का गांव की घाटियों में अध्ययन के दौरान उन्होंने गुफाओं में पत्थरों पर भी इन आकृतियों को पाया है। तब इन कलाओं में पारंगत वैसी महिलाओं को इमाम गांवों से बाहर निकाला जो ककहरा तक नहीं जानती, लेकिन अब उनके हाथों को काम मिलने लगे हैं। हालांकि राज्य गठन के 16 सालों बाद भी झारखंड में कला को लेकर कोई अकादमी नहीं है, जबकि जनजातीय समुदायों में गीत, नृत्य और चित्रों की खास अहमियत होती है। हमें गाँव में मिली हजारीबाग की रिसर्च एडिटर जया राय, उनका कहना था,
फर्स्ट टाइम समबडी लुक्ड एट व्हाट दे हैड बीन डूइंग फॉर सेंचुरीज, उनके नानी से सीखा या दादी से सीखा या सास से सीखे, है ना। सोराय का टाइम में बहू रहती है, उसको भी सीखना पड़ा। मैं गई हूँ भेलवाड़ा गांव में, जहाँ मैं 8 साल की लड़की में देखी हूँ, वो भी कर रही थी, कितना सुंदर।
जाहिर है सरकारी स्तर पर इन कोशिशों के साथ मिले तो बात कुछ और हो। बीबीसी के लिए हजारीबाग से नीरज सिन्हा।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस लोधा कमेटी की आज एक अहम बैठक होने की संभावना है, जिसमें ज्यादातर प्रदेशों की क्रिकेट एसोसिएशन शामिल हो सकती हैं। भारत में क्रिकेट प्रशासन में सुधारों के लिए गठित लोधा कमेटी ने हाल ही में बीसीसीआई के मौजूदा ढांचे को भंग करने के बाद सुधारों की एक नई रूपरेखा बनाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि अभी इस बात पर बहस जारी है कि सुधारों का ये कदम कितना सही था। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने एएफपी के पूर्व क्रिकेट संपादक कुलदीप लाल से इस बारे में बात की।
ऐसा मुझे लगा कि लोधा पैनल ने किया, जो भी किया वो अच्छा किया, ठीक किया, लेकिन ऐसी कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल से वो नहीं करने चाहिए थे। सबसे पहले आप ये सोचें कि वन स्टेट वन वोट, और वो भी आप अगर कहें कि इतने बड़े टीम्स लाइक मुंबई या गुजरात एक ही चीज आ सकती है वोट में, तो वो चीज मुझे लगा कि इट्स नॉट राइट। लेकिन ठीक है, अब उन्होंने किया ही है तो वो तो होना ही होगा। लोग बात करते हैं कि ओवररीच हो गया थोड़ा सा, मेरे ख्याल से हुआ है। लेकिन अब आखिर देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें ही हुई थी, बोर्ड में ही, क्योंकि इतना कुछ नहीं होता, सब ठीक ठाक चल रहा होता। पहले वो लोग लोधा पैनल से बात अगर हो गई होती उनसे, तो हो सकता है वो उन्होंने ऐसा मुझे लगा कि वो सोचते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, हम लोग जो हैं वी आर ऑन टॉप, और हमारे लिए जो है जो हम बोलेंगे वो ही होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है काम, जो आपने किया है और जो पैनल की जो बातें हमने मानी है वो आपको भी अब माननी पड़ेंगी।
अभी तक जिस तरह से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन भारत में हुआ है, देखा गया है ज्यादातर तमाम पॉलिटिशियंस, बड़े बिजनेसमैन, क्लाउट वाले लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, क्या एक नए किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर्स हम देख सकेंगे, जो लोग वाकई में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर शुरुआत से जुड़े रहे और उनकी कोई इकोनॉमिक बैकिंग ना रही हो?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज बोलना कि सिर्फ खिलाड़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, ये नहीं है, ठीक बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जो लोग आए हैं हमारे बोर्ड में, इतने बड़े बड़े लोग रहे हैं जिनको रियली खेल के साथ इतना प्यार था और इतना उन्होंने किया। जो बोर्ड की हालत थी, कभी पैसे नहीं थे, जब कपिल देव की टीम वर्ल्ड कप जीती थी उस टाइम इनके पास कोई रुपया नहीं था, लेकिन अब देखिए कितना पैसा है, तो पैसा जो किया है तो इन्होंने ही तो किया है, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने। हाँ, ऐसे भी है एडमिनिस्ट्रेटर जो सोचते हैं कि बस हम ही रहें और कोई ना आए, बट हाँ, इनमें से अब कोई अब नहीं हो सकता बोर्ड में।
ये थे एएफपी के पूर्व क्रिकेट संपादक कुलदीप लाल। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज राष्ट्रपति के तौर पर अपना विदाई भाषण देने वाले हैं। ये भाषण वो अपने गृहनगर शिकागो में देंगे। राष्ट्रपति के तौर पर बराक ओबामा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म होने वाला है। کابل میں ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سنسد کے پاس ہوئے دو دھماکوں میں کم سے کم 30 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور قریب 80 لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ اتری یمن میں سعودی سرکار کے نیتتو میں ہو رہے گٹھ بندھن سینا کے ہوائی حملوں میں 5 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ ہوائی حملہ ایک اسکول کے نزدیک ہوا تھا۔ امریکہ میں ایک چوری نے ساؤتھ کیرولائنا میں کالے لوگوں کو مارنے کے آروپ میں ایک گورے سپریمیسٹ ویکتی کو موت کی سزا سنائی ہے۔ سپریمیسٹ یعنی ایسا ویکتی جو اپنی نسل کو ہی بہتر مانتا ہے۔ سنیکت راشٹر کے مہا سچیو انٹونیو گوٹریش کے دیشوں کے آپسی مت بھید سلجھانے کی نئی کوشش کرنے کی گزارش کے کچھ دیر بعد ہی سنیکت راشٹر کے لیے امریکی اور روسی دود کے بیچ زبانی جنگ چھڑ گئی۔ بی بی سی سماچار۔
تو اسی کے ساتھ نمسکار، بھارت کی سبھا یہیں سماپت ہوتی ہے۔ آپ سے ہماری اگلی ملاقات شام 7:30 بجے دن بھر میں ہوگی۔ کارکرم کے دوران تکنیکی سہیوگ دیا دیپک جسروٹیا نے۔ امریش دویدی کو دیجیے انمتی۔ نمسکار۔